स्वागत आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 28 नवंबर और दिन गुरुवार। उद्धव ठाकरे आज लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ।
इस सरकार से जो वैचारिक मतभेदों के चलते स्थिरता की बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखना सही नहीं होगा।
लेकिन अब तक ठाकरे परिवार सीधे सत्ता से क्यों रहता था दूर?
वो सत्ता से दूर इसलिए रहे क्योंकि सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वो ये महानगर पालिका में उन्होंने सत्ता हासिल की थी।
दुनिया जहान में आज बात श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की।
इसी चीज का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि उन्होंने कहा कि वो टेररिज्म और इस तरह के हालात से जूझने में सक्षम है। दूसरी बड़ी बात जो उनके फायदे में थी वो पुरानी सरकार की नाकामियां थी।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनने जा रही है। बुधवार रात आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। अमरीकी प्रांत टेक्सस में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में हुए ताज़ा धमाके के बाद प्रशासन ने हजारों लोगों से अपना घर छोड़ने के लिए कहा है। इस प्लांट में 24 घंटों से ज़्यादा वक्त से आग लगी हुई है। ह्यूस्टन में अधिकारियों ने इस प्लांट के 6 किलोमीटर की परिधि से लोगों को निकालने के आदेश दिए हैं। प्लांट में इस आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। अब तक 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इस प्लांट में जब धमाका हुआ तो इसे करीब 50 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में पास किए गए एक बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये बिल हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के पक्ष में है। हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र कानून के तहत अमरीकी विदेश मंत्रालय को इस बात का आश्वासन देना होगा कि हांगकांग में इतनी स्वायत्तता है, तभी अमरीका चीन के साथ अनुकूल व्यापारिक संबंध को उचित ठहरा सकेगा। चीन ने इस कानून की ये कहते हुए आलोचना की है कि ये उसके अंदरूनी मामलों में दखल है। कोलंबिया में हजारों लोगों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया है। इन लोगों की मांग है कि सरकार पेंशन और टैक्स सुधार पर किए फैसले को वापस ले। इस प्रदर्शन के दौरान ज़्यादातर स्कूल और दुकानें बंद रहीं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ जो अभी देखने को मिल रहा है वो ये है कि सरकार कोलंबिया के लोगों को लेकर गलत रवैया अपना रही है, फिर चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर एजुकेशन की। ये थे एक प्रदर्शनकारी एंगल सालास के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। माल्टा में प्रधानमंत्री जोसेफ मस्केट के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी पत्रकार दफिनी करुआना गलीचा की हत्या मामले में पीएम के रुख से नाराज हैं। राजधानी वलेता में संसद के बाहर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। विपक्ष ने भी इस मामले पर संसद का वॉकआउट किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था के प्रवक्ता ने हत्या के मास्टरमाइंड को सजा दिए जाने की मांग की है। 2017 में पत्रकार दफिनी की हत्या मामले में पीएम मस्केट के 3 सहयोगियों ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया था ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। अफगानिस्तान के खुंदुज में सड़क किनारे हुए बम धमाके में 15 लोगों की जान गई है। मरने वालों में 8 बच्चे और 6 महिलाएं भी शामिल हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्यदी ने ग्रीस सरकार से शरणार्थी कैंपों की हालत में सुधार लाने की अपील की है। इन कैंपों में काफ़ी भीड़ है और लोग खराब हाल में रहने को मजबूर हैं। लेस्बास का दौरा करने के बाद फिलिपो ने कहा कि लोग जिस तरह से हिंसा धमकियों के बीच बुरे हाल में रह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता।
These living conditions need urgent improvement. We cannot have in Europe.
अभी जैसे लोग रह रहे हैं उसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। इन लोगों की चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि वो ऐसी दयनीय हालत में रहें जहां उन्हें हिंसा भी झेलनी पड़े। ये थे संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के शब्द। ईरान में सुरक्षा बलों ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान का कहना है कि इन लोगों का अमरीकी एजेंसी CIA से नाता है और हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में इनकी भूमिका रही है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 28 तारीख और दिन है गुरुवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:40 पर महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो महाआघाड़ी गठजोड़ यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि तीन अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों का एक साथ आना, जहां एक तरफ एक नई तरह की शुरुआत है, वहीं दूसरी तरफ इन तीनों का लंबे समय तक साथ रहना एक चुनौती भी है। बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने बीबीसी इंडिया के डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर से बात की और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि क्या तीन पहियों का ये गठबंधन एक स्थिर सरकार दे सकेगा।
देखिए, स्थिर सरकार बनाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 5 साल आप अगर सरकार चला रहे हो और इतना विरोधाभास है तीनों पार्टियों में, और ये विरोधाभास आज से शुरू नहीं होता, ये 1991 से शुरू होता जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने ये कहा था कि सोनिया गांधी जो इटालवी महिला है वो किसी कीमत पर देश की प्रधानमंत्री या कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। तब शरद पवार ने भी ये बात नहीं की थी। फिर शरद पवार, जिन्होंने इसी मुद्दे पर 1999 में पार्टी अपनी अलग बनाई कि भाई विदेशी मूल का मुद्दा नहीं होना चाहिए, वही तीनों पार्टियां यानी जिस सोनिया गांधी के खिलाफ जो दो पार्टियां थी वही अब इनके साथ मर्ज कर रही है। पहला विरोधाभास, पहला कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एनसीपी की स्थापना ही सोनिया गांधी का विरोध करके हुई। शिवसेना शायद पहली पार्टी थी देश की जिसने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। दूसरा विरोधाभास जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर है। जो अखबार निकलता है शिवसेना का, उसमें मराठी में वो लिखते हैं कि हिंदुत्व का ज्वलंत पुरस्कार करने वाला, मतलब हिंदुत्व जो है उसको वो जो जोर शोर से उसका प्रसार करने वाला है, उसका पुरस्कार यानी उसका समर्थन करने वाला हम पार्टी है। और ये जो दोनों पार्टियां हैं ये धर्मनिरपेक्षता में, सेकुलरिज्म, सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखती है।
हालांकि कहा यह जा रहा है कि सरकार बनाने से पहले इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में सहमति हो गई है।
मुझे लगता है सहमति क्या है, सबसे बड़ी सहमति यह है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा जाए। जिसको देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम ये है कि भाजपा को बाहर रखें, तो इन्होंने उसको एक सीएमपी जरूर बनाया है कि हम महाराष्ट्र के हित में, किसानों के हित में ये सरकार चलाएंगे। लेकिन असली बात क्या है, असली बात ये है कि इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखा जाए। तो हमने देखा कि कर्नाटक में भी इसी मुद्दे पर एक तरह से सरकार बनी थी। जेडीएस और कांग्रेस पहले चुनाव अलग अलग लड़े थे, बाद में साथ इसलिए आए क्योंकि उनको भाजपा को बाहर रखना है, और ऐसी सरकार नहीं चल पाई थी। या पीछे मुड़ के भी देखिए, 1996 में जब वाजपेयी सरकार गिर गई थी तो 2 या 3 साल तक खिचड़ी सरकार बनी, दो सरकारें बनी जो सिर्फ भाजपा को बाहर रखने के लिए बनी थी, लेकिन उनमें कोई स्थिरता नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इस सरकार से जो वैचारिक मतभेदों के चलते स्थिरता की बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखना सही नहीं होगा।
जी, आपने जिक्र किया शरद पवार का। शरद पवार अब आज की राजनीति में वो चेहरा है महाराष्ट्र में जो दो बिल्कुल अलग पार्टियों को एक ही मंच पर एक साथ लेकर आए। लेकिन सरकार बनने के बाद उनका क्या रोल रह जाएगा? क्या ऐसा है कि वो पकड़ के रखेंगे धागा तभी ये गठबंधन मजबूत रहेगा?
नहीं, उनके बिना ये सरकार नहीं चल सकती है। जैसे शिवसेना पहले जब सरकार चलाती थी तो शिवसेना बड़ा शान से या जोर शोर से कहती थी कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल है। मातोश्री जो बांद्रा में, मुंबई में ठाकरे परिवार का घर है, वहां से उस रिमोट कंट्रोल से हम सरकार चलाते हैं, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो हमारे कहने पर चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिमोट कंट्रोल अब जो मातोश्री या शिवसेना प्रमुख का घर है उससे शिफ्ट होकर वो एनसीपी प्रमुख के घर, यानी सिल्वर ओक कहते हैं उस जगह को दक्षिण मुंबई में, उस घर पर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि शरद पवार ने ही इसको बनाया है, इस गठबंधन को, तो बिगाड़ भी वही सकते हैं। क्योंकि देखिए, शिवसेना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक गठबंधन में थी भाजपा के साथ में, तो एक तरह से उन्होंने उकसाया शिवसेना को कि आप मुख्यमंत्री पद की मांग रखो, और उनको एक तरह से बाहर निकलवाया उस गठबंधन से। जब वो बाहर निकल गए तो कांग्रेस को मनाया, तो ये जो सूत्रधार है इसी के हाथ में कठपुतली है इस सरकार की, वो जब तक चाहेंगे तब तक सरकार चलाते रहेंगे।
एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी कभी हार नहीं मानती। महाराष्ट्र के मुद्दे पर जरूर उसे बैकफुट पर जाना पड़ा, लेकिन 5 साल हैं अभी। बीजेपी का बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष में होना कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस सरकार के लिए?
देखिए, एक बात तो हम समझ लें कि बीजेपी बैकफुट पर नहीं गई थी, लेकिन जब शुक्रवार को पिछले इन तीनों दलों ने कह दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसी रात को बीजेपी ने सरकार बना ली। तो इसका मतलब बीजेपी की आप मंशा समझ सकती है कि किसी भी कीमत पर सरकार बनाना है। वो प्रयास किया, वो विफल रहा। हो सकता है कि बीजेपी अभी सरकार बनाने का प्रयास ना करे, लेकिन ये एक तरह से उनको जो चोट पड़ी है, उनके स्वाभिमान कह लीजिए, उनका अपमान हुआ है, या जो अहंकार, जो भी आप कह लीजिए, एक बहुत बड़ी चोट पड़ी है, तो उसका बदला बीजेपी लिए बिना रहेगी ऐसा लगता नहीं है।
तो ये थे बीबीसी इंडिया के डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर, जिनसे बात कर रही थी मानसी दास। बम्बई यानी आज की मुंबई में साल 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। पार्टी की स्थापना बाल ठाकरे ने की थी। 2019 से पहले यानी बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे से पहले ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति ने न कभी चुनाव लड़ा न सरकार में कभी कोई पद संभाला। आज शाम ठाकरे परिवार से पहली बार कोई व्यक्ति उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में ये चर्चा भी हो रही है कि अब तक ठाकरे परिवार सीधे सत्ता से दूर क्यों रहता था। सुनिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
1966 में शिवसेना की स्थापना के बाद से अब तक ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बना था। अब उद्धव ठाकरे इस परिवार के वो पहले शख्स होंगे जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। वो आज शाम शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि अब तक ठाकरे परिवार सत्ता से दूर क्यों रहा था। वरिष्ठ पत्रकार समर खडस कहते हैं,
बाल ठाकरे जी हमेशा सत्ता से बाहर रहे क्योंकि उनकी राजनीति की स्टाइल अलग थी और वो शिवसेना के सुप्रीमो रहे और वो एक हमेशा सत्ता के बाहर रहने के बावजूद भी एक पावर सेंटर बना रहा और बाल ठाकरे जी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि अगर उन्होंने कहा और वो नहीं होगी। अगर सरकार में जो भी रहे वो अगर उनकी चीज नहीं मानते हैं तो बाल ठाकरे जी पर प्यार करने वाले इतने लोग थे कि वो अपने तरीके से वो करवा लेते थे, इसलिए वो कभी सत्ता में नहीं आए।
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन का कहना है कि ठाकरे परिवार सत्ता से इसलिए दूर रहा क्योंकि वो सत्ता हासिल ही नहीं कर सकता था।
वो सत्ता से दूर इसलिए रहे क्योंकि सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वो ये महानगर पालिका में उन्होंने सत्ता हासिल की थी। एक बार वहां पर उन्होंने सत्ता हासिल की तो फिर उन्हें समझा कि सत्ता का मतलब क्या होता है और ये विधानसभा में आने के लिए उनको भाजपा के साथ उनको ये गठबंधन करना पड़ा था। उसके पहले तो उनके इतने आमदार चुन करके नहीं आते थे कि वो सत्ता का भाग हो सके, लेकिन खास करके पिछले 10-12 सालों में जब से उद्धव के हाथ में शिवसेना की डोर आई है, उद्धव ने पार्टी को मेनस्ट्रीम करने की कोशिश की है, उसे सज्जन पार्टी बनाने की कोशिश की है कि गुंडों की पार्टी की नजर से नहीं देखा जाए।
अब जब सत्ता सीधे ठाकरे परिवार के हाथ में आ गई है तो अब वो कैसे काम करेंगे। सरकार बनने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भूमिका कितनी अहम होगी।
अभी एनसीपी की भूमिका बहुत ही बड़ी हो गई है इस सरकार में। उद्धव ठाकरे के पास अनुभव नहीं है, वो तो निर्भर रहेंगे, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर पे निर्भर रहेंगे। वो थोड़ा बहुत वो अपने जो मंत्री लोग हैं जिनको पिछली सरकारों में अनुभव है उनके ऊपर भी निर्भर रहेंगे, बट सबसे ज्यादा तो एनसीपी के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। वो तो कह सकते हैं कि पूरी सत्ता अभी शरद पवार के हाथ में आई है। जो हम शरद पवार को इतने सालों से कहते आए हैं दैट ही इज द अनक्राउन्ड किंग ऑफ महाराष्ट्र, वापस ये सिचुएशन आ गई है महाराष्ट्र में कि सत्ता में रहे बगैर पूरी सत्ता शरद पवार के हाथ में है।
लेकिन समर खडस का मानना है कि शरद पवार ऐसी राजनीति करते ही नहीं है कि रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाएं।
शरद पवार जी की राजनीति की स्टाइल अलग है। शरद पवार जी ने पूरे विश्वास से उद्धव ठाकरे को कन्विंस किया है। उद्धव ठाकरे शुरू में कन्विंस भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सरकार अगर स्टेबल सरकार होनी चाहिए और अगर ये स्टेबल करनी है तो आपको इसकी बागडोर संभालनी पड़ेगी और इसलिए उद्धव ठाकरे उससे कन्विंस हुए।
फिलहाल सच्चाई यही है कि शिवसेना के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार ठाकरे परिवार के सदस्य के हाथों में महाराष्ट्र की सत्ता की कुंजी होगी। अब आगे सरकार में दखल गठबंधन के आला नेताओं का होगा या फिर सीधे मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का, ये तो वक्त ही बताएगा। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है। बताएं विकास, क्या कहते हैं आज के अखबार।
इकबाल जी, द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि महाराष्ट्र में एनसीपी से एक डिप्टी सीएम भी होंगे और स्पीकर पद पर किसी को कांग्रेस से नियुक्त किया जा सकता है। अखबार लिखता है कि डिप्टी सीएम पद पर अजीत पवार या जयंत पाटिल को नियुक्त किया जा सकता है या वो शपथ ले सकते हैं। इसकी हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। द इकोनॉमिक टाइम्स समेत कई अखबारों ने इस मुलाकात की तस्वीर को पहले पन्ने पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आदित्य ठाकरे को शायद कैबिनेट में जगह ना मिले।
आपको याद होगा एक जमाने में यही शिवसेना राहुल गांधी के मुंबई दौरे का विरोध कर रही थी और वो कितनी बड़ी खबर बनी थी। अब आदित्य ठाकरे खुद
सोनिया गांधी को आमंत्रण देने आए थे
जी। कल दिन में खबरों में गांधी परिवार भी रहा और महात्मा गांधी भी। अमित शाह ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर संसद में कहा था कि गांधी परिवार ने कई बार एसपीजी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। अब जो नया बिल में संशोधन किया गया है उसके तहत अब एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और पीएम आवास में रहने वाले उनके परिवार को मिलेगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी जो आवंटित आवास में एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी सिर्फ 5 साल के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने इसी पहले पन्ने पर जो महात्मा गांधी की दूसरी खबर, जो गांधी परिवार से जुड़ी दूसरी खबर है महात्मा गांधी की, उसमें साध्वी प्रज्ञा का जिक्र है।
भोपाल की सांसद जो है।
जी जी, कल उन्होंने संसद में गोडसे के लिए देशभक्त शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद वो चर्चा में रही थी। इससे पहले भी वो एक बार नाथुराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं।
अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री का दिल अब दोबारा दुखता है कि नहीं।
जी, उन्होंने पिछली बार कहा था कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और जी, द ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन उत्तरी प्रांत के गवर्नर बन सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मुरलीधरन को गवर्नर पद स्वीकार करने के लिए निमंत्रण भेजा है।
वो सबसे प्रोमिनेंट तमिल में से एक हैं श्रीलंका के।
जी जी जी। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी की तस्वीर छापी है। कल दिल्ली में भी पानी बरसा था जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ है और इस खबर को कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर कैटेगरी के तहत बैड लोन्स के मामले बीते 6 महीने में 107% बढ़े हैं। हिंदुस्तान की खबर है कि दवा कंपनियां मुनाफा कम करने को तैयार हो गई हैं। सरकार और फार्मा कंपनियों के बीच इसे लेकर सहमति बन गई है। इस फैसले से 10,000 से ज़्यादा दवाओं की कीमत में कमी आएगी। दैनिक भास्कर अखबार की जो पहली खबर मैं देख रहा हूँ इकबाल जी, वो कार्टोसेट 3 सेटेलाइट लॉन्च को है और इसका जो शीर्षक लगाया है वो लगाया कि 509 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष है, कार का नंबर तक पढ़ लेगा सेटेलाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें नवभारत टाइम्स की, तो द अशोक खेमका का जो 53वीं बार तबादला हुआ है, उन्होंने ट्विटर पे लिखा है इसको लेकर,
श्रीलंका हरियाणा के जो आईएएस ऑफिसर
जी जी अशोक खेमका जी। दैनिक जागरण की खबर है कि अब इस साल में आएगी नई शिक्षा नीति।
बहुत शुक्रिया आपका विकास त्रिवेदी अखबारों की समीक्षा के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब है दुनिया जहान का वक्त आज, और आज दुनिया जहान में बात हम करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका के पूर्व रक्षा प्रमुख गोटाभाया राजपक्षे अब देश के राष्ट्रपति बन गए हैं और वो अपने पहले विदेशी दौरे पर शुक्रवार को भारत पहुंच रहे हैं। चरमपंथी संगठन एलटीटीई के खिलाफ उनकी निगरानी में हुई कार्रवाई के बाद उन पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे थे। देश के राष्ट्रपति के रूप में गोटाभाया राजपक्षे के आगे क्या चुनौतियां हैं और उनके कार्यकाल में भारत श्रीलंका के संबंध क्या रूप लेते हैं, इस हफ्ते के दुनिया जहान में इसी की पड़ताल कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।
दुनिया जहां
गोटाबाया राजपक्षे नमः। श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराजे।
श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए ये है 70 वर्षीय गोटाभाया राजपक्षे। सेना में 20 साल रहने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर हुए गोटाभाया राजपक्षे ने आईटी क्षेत्र में भी काम किया। 2005 में वो अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 10 साल तक श्रीलंका के रक्षा प्रमुख रहे और उनके खाते में देश के तमिल चरमपंथी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम यानी एलटीटीई के खात्मे का श्रेय दर्ज है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान तकरीबन 1,00,000 लोग मारे गए थे। 2009 में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों के गायब होने का सिलसिला थमा नहीं था। कहा जाता है कि इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले चरमपंथियों को भी मार दिया गया और 20,000 से अधिक आम लोग गायब हुए। उस दौरान ऐसी सफेद वैन घुमा करती थी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता या एलटीटीई के समर्थक रहे लोगों को उठा लिया करती थी। गृह युद्ध के समाप्त होने के बाद गोटाभाया राजपक्षे से वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण ने मुलाकात की थी। वो कहते हैं कि तब गोटाभाया ने एलटीटीई पर जीत का श्रेय अपने भाई और तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को दिया था। वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण बताते हैं,
उन्होंने मुझे ये बताया कि प्रेसिडेंट जो उनके बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षा, उनको साफ साफ बताए थे कि भाई आप एलटीटीई को खत्म करना है, जो आपको चाहिए मुझे बताओ, मैं उसका व्यवस्था करूंगा। तो एक स्पेसिफिक मिशन इनको दिया गया था और उन्होंने उस मिशन को खत्म करने के लिए औजार मांगे थे जो हिंदुस्तान देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय डीएमके के साथ कोलिशन सरकार चला रहे थे, तो चाइना और पाकिस्तान पे कर्जे पे ये औजार लिए थे और LTTE को खत्म कर दिया।
नौ भाई बहनों में पांचवें नंबर के गोटाभाया बहुसंख्यक सिंगला समुदाय और देश के सबसे ताकतवर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। चुनाव में उन्हें 52% से अधिक वोट मिले। इस चुनाव में उनके खिलाफ सजित प्रेमदासा की चुनौती थी, जो पिछली मैत्रीपाला सिरिसेना सरकार में अहम पद संभाल चुके हैं। इसी साल अप्रैल में ईस्टर के मौके पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण साफ साफ दिखाई दिया। बहुसंख्यक बौद्ध जो सिंगला समुदाय से आते हैं, उन्होंने मुसलमानों का बहिष्कार किया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सीधा सीधा फायदा गोटाभाया राजपक्षे को हुआ। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनी कहते हैं कि गोटाभाया का चुनाव प्रचार असुरक्षा और सरकार की नाकामयाबियों पर केंद्रित था।
इसी चीज का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि उन्होंने कहा कि वो टेररिज्म और इस तरह के हालात से जूझने में सक्षम है। दूसरी बड़ी बात जो उनके फायदे में थी, वो पुरानी सरकार की नाकामियां थी। जो पुरानी सरकार थी वो बिल्कुल काम नहीं कर सकी, सिक्योरिटी के मामले में नहीं और मामलों में भी, और उनका अलायंस कोएलिएशन जो वादे उन्होंने किए थे जनता से, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार निकम्मी है। और चूंकि सुजीत प्रेमदासा उसी सरकार के हिस्से थे, इसलिए उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण श्रीलंका के अल्पसंख्यक समुदायों, मुसलमानों और तमिलों में एक असुरक्षा का डर बैठा हुआ है। गृह युद्ध के दौरान गोटाभाया द्वारा की गई कार्रवाइयों ने भी उन्हें डरा रखा है। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद दिए अपने भाषण में गोटाभाया कह चुके हैं कि वो सभी समुदायों को साथ लेकर चलेंगे और विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। गोटाभाया ने कहा है कि गृह युद्ध के दौरान उन पर लगे मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों को लेकर वो कुछ नहीं करेंगे। श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी इलाके तमिल बहुल है और तमिल खुद को दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं। तमिलों को लेकर भारत की भी चिंताएं रही हैं। तमिलों को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए गोटाभाया को क्या करना चाहिए, इस सवाल पर S. वेंकट नारायण कहते हैं,
देखिए वहाँ मुस्लिम्स और तमिल्स जो है ना, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ये अगर श्रीलंका को आगे बढ़ना है, सबको साथ लेके गोटाभाया राजपक्षा आगे बढ़ना है, नहीं तो उस देश में तरक्की होना मुश्किल होगा। और अगर मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि हमसे नाइंसाफी हो रही है और सिंगला मेजॉरिटी वाले उनके ऊपर अटैक्स जारी रखेंगे तो नहीं चलेगा, तो वो ये आतंकवाद यहाँ बढ़ सकता है। और तमिल्स में भी अगर ये कुछ नहीं करेंगे उनके लिए जानबूझकर और मजबूरन, तो LTTE जैसा एक संस्था फिर उभर आने का खतरा जरूर है।
देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के अलावा विदेश नीति भी गोटाभाया के आगे एक प्रमुख चुनौती है। ऐसा माना जाता है कि सिरिसेना की ही तरह गोटाभाया भी चीन के करीब है। श्रीलंका पर चीन का 50,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था, जिसके बाद सिरिसेना सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। गोटाभाया साफ कर चुके हैं कि वो हम्बनटोटा की लीज की समीक्षा करेंगे। चीन के कई हाईवे और पावर प्रोजेक्ट अभी और श्रीलंका में बनने हैं। क्या चीन और श्रीलंका वाकई में बेहद अच्छे दोस्त हैं और श्रीलंका भारत को नजरअंदाज कर रहा है, S. वेंकट नारायण कहते हैं।
इसके बारे में काफी लोग हिंदुस्तान में समझते हैं कि ये राजपक्षा परिवार जो है ना चाइना के चमचे हैं। ये इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि ये जानबूझ के प्रो चाइना पॉलिसी और एंटी इंडिया पॉलिसी चलाएंगे, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है बुद्धिज्म के जरिए से, हर एक बुद्धिस्ट जो श्रीलंका में रहते हैं उनका ख्वाहिश है बोधगया और बाकी जितने भी जगह हैं जहां भगवान बुद्ध रह चुके हैं वो आके दर्शन करने का ख्वाहिश रखते हैं। वहां के काफी लोग हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आते हैं और हम 1,00,000 घर जो बेघर हो गए थे तमिल से श्रीलंका में, उनके लिए हम वहां बना रहे हैं और वहां अरबों का मदद भारत सरकार ने दिया है और हमारे प्राइवेट कंपनीज भी वहां काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इसलिए ये श्रीलंका और भारत के बीच में जो संबंध है सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, कल्चरल है और रिलीजियस है। ऐसा संबंध चाइना से नहीं है।
गोटाभाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय विदेश मंत्री S. जयशंकर उन्हें बधाई देने कोलंबो पहुंचे और उन्होंने उन्हें भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया और वो 29 नवंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत दौरे से पहले श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करेंगे और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसके पड़ोसी देश को कोई नुकसान हो। साथ ही गोटाबाया ने ये भी कहा है कि वो भारत और चीन दोनों के साथ करीबी रूप से काम करना चाहते हैं। भारत अपने यहाँ आने वाले सामान के लिए कोलंबो बंदरगाह का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन भारत ने पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने नहीं माना था। भारत को श्रीलंका से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए और क्या करना चाहिए, प्रोफेसर मुनि इस पर कहते हैं।
मैं समझता हूँ भारत के साथ सामान्य संबंध बढ़ेंगे। भारत को भी ये चाहिए कि वो श्रीलंका के लोगों की नजरों में केवल तमिलों का मित्र होकर नहीं उभरे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको सिंगली क्षेत्रों में भी लेने चाहिए जो बहुत समय से नहीं लिए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से इसकी तरफ मामूली सी शुरुआत हुई है और उस शुरुआत को भी बढ़ाना चाहिए। इस पे निर्भर करेगा कि भारत भी गोटाबाया की सत्ता को कैसे देखता है और गोटाबाया डोमेस्टिकली क्या करते हैं और चीन के साथ क्या करते हैं।
भारत और राजपक्षे परिवार के संबंध कुछ कड़वे जरूर हुए हैं, लेकिन पिछले दो सालों में भारत ने इन संबंधों को सुधारने की काफी कोशिश की है। एक तरफ पाकिस्तान चीन संबंध है तो दूसरी ओर नेपाल चीन में दोस्ती बढ़ रही है और अब श्रीलंका चीन के नजदीक जा रहा है, तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि उसका सबसे करीबी दोस्त रहा श्रीलंका भी उससे दूर चला जाए। गोटाबाया जब शुक्रवार को भारत में होंगे तो उनसे दोस्ती बढ़ाने की और भी कूटनीतिक कोशिशें जारी रहेंगी।
तो भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात क्रिकेट की। शिखर धवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के दौरान उन्हें बाएं घुटने में चोट लगी थी। मंगलवार को BCCI की मेडिकल टीम ने जांच के बाद ये बताया कि उनका घाव भरने में अभी वक्त लगेगा, ऐसे में उन्हें कुछ वक्त और आराम करना चाहिए। उनकी जगह केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में जगह दी गई है। और अब बात बॉडी बिल्डिंग की। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में हुई 11वीं विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2019 में सुवर्ण पदक जीतने वाले भारतीय सेना के हवलदार अनुज तालियान का स्वदेश वापसी पर जोरदार स्वागत किया गया। मेरठ के रहने वाले इस फौजी ने बीते दिनों 100 प्लस किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता था। और अब जाने से पहले बात शतरंज की करते हैं। विश्वनाथन आनंद टाटा स्टील रैपिड एवं ब्लिट्स टूर्नामेंट की आखिरी 5 बाजियों में सिर्फ 1 अंक लेकर ग्रैंड शतरंज टूर से बाहर हो गए हैं। वो 16 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहे। विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने टूर्नामेंट में 27 अंक हासिल कर ग्रैंड शतरंज टूर में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ डाला। कार्लसन अंतिम दिन अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ शानदार जीत दर्ज की और अमेरिका के हेकारू पर 4 अंक की बढ़त के साथ इस चरण में शीर्ष पर बने रहे। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और जाने से पहले सुन लेते हैं एक दफा फिर प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनने जा रही है। अमरीकी प्रांत टेक्सस में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में हुए ताज़ा धमाके के बाद प्रशासन ने हजारों लोगों से अपना घर छोड़ने के लिए कहा है। इस प्लांट में 24 घंटों से ज़्यादा वक्त से आग लगी हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में पास किए गए एक बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये बिल हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के पक्ष में है। हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र कानून के तहत अमरीकी विदेश मंत्रालय को इस बात का आश्वासन देना होगा कि हांगकांग में इतनी स्वायत्तता है, तभी अमरीका चीन के साथ अनुकूल व्यापारिक संबंध को उचित ठहरा सकेगा। चीन ने इस नए कानून की आलोचना की है। कोलंबिया में हजारों लोगों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया है। इन लोगों की मांग है कि सरकार पेंशन और टैक्स सुधार पर किए फैसले को वापस ले। माल्टा में प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी कपिल देव सिंह ने, माफ करिएगा, آپ سے اگلی ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے کاریکرم دن بھر میں، لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ 24 گھنٹے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر۔ اور اب اقبال احمد کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دیجیے اجازت، نمسکار۔